नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ नमः सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं निट्ठव्यट्टकम्मं वीरमणमियूणपत्तसौवट्टम् अणुभागस्य विहत्तिं जहो वै संपरुवेमो। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक जो अनुभाग विभक्ति नाम का जो अर्थाधिकार है, उसमें हम 67 पृष्ठ पर आ गए, 67। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा, नाना यानी अनेक जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, और उसमें भी स्पर्शन संबंधी बात है कि उत्कृष्ट अनुभाग वाले जीवों का क्षेत्र कितना है। जब क्षेत्र कहते हैं तो जीवों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय उनकी अवगाहना, एक बात, या वो कितने क्षेत्र में रहते हैं उसकी अपेक्षा से भी बात करते हैं, कितने क्षेत्र में विहार करके जाते हैं, कहाँ तक उनका मारणांतिक या उपपाद होता है, मारणांतिक समुद्घात जो होता है, तो उसकी अपेक्षा से उसका क्षेत्र भी और स्पर्शन यहाँ बता रहे। यहाँ अपना विषय स्पर्शन का चल रहा है। क्षेत्र का अर्थ है वर्तमान में कितना क्षेत्र व्याप्ता है, और स्पर्शन यानी अनादिकाल से अभी तक अन्य अन्य जीवों ने, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों ने कितना क्षेत्र व्यापा है, तो उसकी बात करते हुए अभी हम एक इंद्रियों में देख रहे हैं। तो यहाँ 106 नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे, एक इंद्रियों में मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों ने कितना क्षेत्र का स्पर्शन किया है। एक इंद्रियों में उत्कृष्ट किसके होता है, तो जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट का बंध करके उसका घात किए बिना, क्योंकि अंतर्मूर्त में घात होता है, घात किए बिना एक इंद्रियों में उत्पन्न होता है, उन एक इंद्रियों को भी उत्कृष्ट होता है, तो उसको कहते हो उनको कितना भाग का क्षेत्र का स्पर्शन किया है। उसके लिए कहते लोक के असंख्यातवे भाग, क्यों, ये कौन से जीव लिए है, पंचेंद्रियों में से एक इंद्रियों में आने वाले, तो वर्तमान में उनकी संख्या अल्प है, पंचेंद्रिय असंख्यात है, और उसमें से मरकर उत्कृष्ट के साथ एक इंद्रियों में जाने वाले बहुत ही अल्प है, इसलिए वहां क्षेत्र लोक का असंख्यात वा भाग कहा। 67 पेज। परंतु सर्वलोक का स्पर्शन किया है, ये सर्वलोक कैसे घटित किया, कारण अनादिकाल से हम देखते हैं अतीत काल में, तो उत्कृष्ट के साथ जीव लोकाकाश में सर्वत्र कहीं ना कहीं उत्पन्न हुआ है। एक इंद्रियों के रहने का क्षेत्र तो पूरा लोक है, इसलिए यहाँ स्पर्शन है वो पूरा लोक है। वर्तमान में संख्या कम है, अनादि से अगर देखते हैं उनकी संख्या, उत्कृष्ट के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई जीव कहीं ना कहीं जन्मा है, तो पूरा ही लोक उसका स्पर्शन कहते हैं उसको। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों ने सब लोक का स्पर्शन किया है, क्योंकि एक इंद्रिय पूरे लोक में रहते हैं, सूक्ष्म एक इंद्रिय तो सर्वत्र पाए जाते हैं, और उनके उत्कृष्ट नहीं है तो अनुत्कृष्ट ही है सबका, वो जघन्य हो अजघन्य हो उसको क्या कहेंगे हम, अनुत्कृष्ट, तो ये पूरे लोक में पाए जाते हैं, इसलिए उसका वर्तमान का भी पूरा लोक है, तो अतीत काल भी पूरा लोक है। इसी प्रकार बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तों के जानना चाहिए, क्योंकि पंचेंद्रियों में से उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करके इनमें जन्मने वाले जीव है, तो वर्तमान में लोक का असंख्यात्वा भाग, और अतीत काल की अपेक्षा पूरा लोक, क्योंकि मरकर सर्वत्र जा सकते हैं। सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त
और एकेंद्रिय है, वो तो वनस्पति का एक में ज्यादा है, लिगोद में
बादर एकेंद्रियों में
वनस्पति
का एक ज्यादा है। तो प्रश्न क्या है आपका?
जो पंचेंद्रिय में से जो उत्पन्न होने वाले उत्कृष्ट के साथ वो तो असंख्यात भागी होगा, और अनुत्कृष्ट में सभी जगह से आ सकते हैं, वही अपेक्षा।
अनुत्कृष्ट में सभी जगह से आ भी सकते हैं और सभी जगह ऑलरेडी स्टेइंग है जो सभी
है। बादर तो लोक के असंख्यात विभाग भी होगा ना?
बादर एक केंद्रीय लोक के असंख्यात विभाग है, परंतु वो मरकर भी जाते हैं, उपपात भी होता है उसमें। उस अनुत्कृष्ट में तो सब कुछ ले सकते हैं ना, उपपाद लेना, मारणांतिक लेना। अनुत्कृष्ट है, जो उत्कृष्ट नहीं है वो अनुत्कृष्ट, तो उसमें मारणांतिक भी घटित होगा। उपपाद का अर्थ होता है जन्म का पहला समय। लोकाकाश के किसी भी कोने से मरकर इसमें आता है तो उसके प्रदेश फैले रहते हैं। तो ये अनादिकाल से अगर हम देखते तो पूरा लोक ही इन्होंने व्यापा है, इसलिए सब में लिया। सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान भंग है। दे विकलेंद्रिय कितने जगह में रहते हैं? अब विकलेंद्रियों में उत्कृष्ट किसके होगा? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जो मिथ्या दृष्टि है, उत्कृष्ट का बंध करके विकलेंद्रिय में आएंगे। विकलेंद्रिय का अर्थ पता है अश्विन? द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय को विकलेंद्रिय कहते हैं। तो विकलेंद्रिय रहते कहाँ है पहले ये नक्के करेंगे। आपको पता है कुछ विकलेंद्रिय जीव कहाँ पाए जाते हैं? त्रस नाली में हम कहेंगे, लोकाकाश में। हमें तो क्या पूरे त्रस में है? नरकों में है, स्वर्गों में है?
नहीं।
तो भोग भूमि में है?
नहीं है,
नहीं है। तो कहाँ है?
कर्म भूमि
में। तो कर्म भूमि में यानी अभी ये जो ढाई द्वीप है उसमें भी जो कर्म भूमिया है वहाँ तो है, और स्वयं भ्रमण द्वीप आउटर द्वीप यानी द्वीप का आउटर भाग और समुद्र वहाँ पाए जाएंगे। तो ये मध्यलोक में ही पाए जाएंगे ना अभी, और वो उसका भी कुछ भाग बीच वाले द्वीपों में समुद्रों में तो नहीं पाए जाते, परंतु ये उत्कृष्ट के साथ आएंगे कहाँ से? पंचेंद्रियों में से ही आएंगे, और जाएंगे कहाँ? विकलेंद्रियों में जाएंगे। तो मरण की अपेक्षा ले लो, उपपाद की अपेक्षा ले लो, मारणांतिक की, वो मध्य लोक में ही है। तो लोक का असंख्यात्वा भाग ही घटित होगा, क्योंकि एकेंद्रियों में से आने वाले तो नहीं लेना है। यहाँ हम जघन्य का प्रकरण नहीं ले रहे, उत्कृष्ट का देख रहे हैं। इसलिए यहाँ जो कहा ना, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान भंग है, जो हमने 66 पृष्ठ पर देखा था, देख लेते फिर। यहाँ 105 नंबर का जो पॉइंट है उसमें नीचे से पांचवी लाइन कि उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, तो क्षेत्र कितना है? तो लोक का असंख्यात होगा। वही यहाँ पर घटित होता है। किसमें किसमें? विकलेंद्रियों में, पंचेंद्रिय अपर्याप्तों में और त्रस अपर्याप्तों में। अब आगे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले पंचेंद्रियों और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, तो लोक के असंख्यात भाग, ये तो वर्तमान में है, तीन पॉइंट बताएं। दूसरा है 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग, इसका अर्थ होता है जो देव है उत्कृष्ट का बंध कर रहे, उत्कृष्ट की सत्ता है, और वो विहार करके कहाँ तक जा सकते हैं? तो तीसरे नरक तक, यानी दो राजू नीचे, और ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? सोलवे स्वर्ग
नहीं,
विहार कर की बात चल रही है। 8/14 विहार की अपेक्षा है, ऊपर विहार करते हैं ये सारे ही लेना, भवनत्रिक वगैरह भी स्वयं तो गमन करेंगे तो स्वधर्म तक जाएंगे, देव राजू ऊपर जा सकते हैं, परंतु अन्य देव उनको ले जाए तो सोलवे स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो ये उनके विहार की अपेक्षा कुछ कम, 8 भाग कुछ कम इसलिए कहा कि जो 2 राजू नीचे नरक है, 3रा नरक 2 राजू नीचे है, परंतु जो पृथ्वी है, 3री पृथ्वी नीचे से 1000 योजन छोड़कर उसके ऊपर नरक के बिल पाए जाते हैं, इसलिए कुछ कम कहा। और सब लोक का स्पर्शन किया है, ये जो सब लोक का स्पर्शन बताया है ये कैसे होगा? मारणांतिक, क्योंकि यहाँ बात किसकी चल रही है? पंचेंद्रियों की। अब पंचेंद्रिय देव और नार की तो मरकर पूरे लोक में नहीं जाएंगे मारणांतिक करके, परंतु मनुष्य और तिर्यंच है, उत्कृष्ट का बंध कर रहे और एकेंद्रियों में जन्म लेने वाले हैं, तो जहां जन्म लेने वाले हैं वहां तक का मारणांतिक समुद्घात होता है। मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले उनके आत्म प्रदेश मूल शरीर में तो रहते ही है, जहां जन्म लेना है वहां तक फैले जाते हैं। कैसे? सिंगल लाइन में, जैसे हम विग्रह गति में देखते हैं ना, मोड़े मोड़ा लेकर चले जाते हैं, वैसे मोड़ा लेकर वहाँ आत्म प्रदेश भी, जैसे एक सिंगल लाइन, जैसे हम वो लेसर बीम कैसे देखते हैं ना, तो वो वैसे वो स्प्रेड अप रहते हैं। तो पूरे लोक में, क्योंकि अतीत काल की अपेक्षा हमको देखना है, तो पूरे लोक में कहीं ना कहीं जीवों ने जन्म लिया है अभी तक, तो पूरा लोक उसका स्पर्शन कहलाता है। इसी प्रकार जो पंचेंद्रियों में घटित किया, ऐसा ही त्रस पर्याप्त पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, क्योंकि ये भी जीव उत्कृष्ट बंद करके उनमें भी यही बात घटित होगी। स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, चक्षु दर्शन वाले और संगी जीवों में स्पर्शन जानना चाहिए। विशेषार्थ जो मनुष्य या तिर्यंच उत्कृष्ट अनुभाग का बंध कर तथा उसका घात किए बिना, एक अंतर्मूर्त में घात नियम से होता है और अनुत्कृष्ट हो जाता है, तो घात किए बिना उक्त एकेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के उत्कृष्ट अनुभाग संभव है। उक्त ने ऊपर जो लिस्ट बड़ी पढ़ी थी हमने, एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय पर्याप्त अपर्याप्त सब, ऐसे जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है। वर्तमान में उसका जो क्षेत्र है वो लोक का असंख्यातवा भाग है, क्योंकि पंचेंद्रिय मरकर जा रहे हैं, उनकी संख्या अल्प है, एकेंद्रिय भले अनंत हो परंतु उनमें उत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव थोड़े हैं, इसलिए उक्त प्रमाण कहा। किंतु ऐसे एकेंद्रियों का अतीत स्पर्शन सब लोक है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा। इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग के बंधक जीवों का सब लोक प्रमाण स्पर्शन है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि ये जो सारे पूरे लोक में है, केंद्रीय जीव तो पूरे लोक में पाए जाते हैं, और जिनको उत्कृष्ट नहीं वो सारे ही कैसे हैं? अनुत्कृष्ट ही है, और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त तक ही रहेंगे, बाद में वो ही जीव अनुत्कृष्ट हो ही जाएंगे। विकलत्रय और त्रस अपर्याप्तकों का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान है, यह भी स्पष्ट है, उसका कारण भी अभी हमने देखा। विकलत्रय भी मध्यलोक में कर्मभूमि में पाए जाते हैं। यूं तो पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है। पंचेंद्रिय जीव कहाँ रहते हैं? तो आप कहेंगे तीनों लोक में रहते हैं, परंतु क्या पूरे लोक व्याप्त है वो? नहीं, पंचेंद्रिय जो है मध्यलोक में तो मनुष्य और तिर्यंच है, नारकी अपने अपने नरकों में रहते हैं, पर उनका अगर क्षेत्र देखेंगे और देवों का भी, तो सभी पंचेंद्रियों का मिलकर क्षेत्र जो है वो भी लोक का असंख्यात भाग ही है। किंतु विहार आदि की अपेक्षा, विहार आदि में जैसे हमने देखते ना, जब क्षेत्र निकालते हैं तो उसमें कितने पद कितनी अपेक्षाएं देखते, याद है आपको? हाँ कितनी है? दस दस, अभी दस गिना। पहले में पहले जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं स्वस्थान, स्वस्थान विहार करके जहाँ तक जा सकते हैं उसको कहेंगे विहार व स्वस्थान। जैसे हमारा रहने का ठिकाना कहाँ है तो हम बम्बई में रहते हैं, और विहार करके कहाँ जा सकते हैं? अभी कभी भी कहीं पे जो यूएस जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ या ऑस्ट्रेलिया जाओ, तो विहार करके इतना सब जा सकते हैं ना, ये विहार वत अपना हुआ क्षेत्र। और फिर ये दो हो गए, फिर बाद में सारे समुद्घात लेना बीच में, कौन कौन से? वेदना कषाय, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात, आहारक समुद्घात, तेजस समुद्घात, केवली समुद्घात, और एक रह गया वो उपपाद। उपपाद यानी जैसे मारणांतिक के प्रदेश फैले रहते हैं, मरण होने पर वो मूल शरीर में से प्रदेश उठते हैं, पहले मोड़ तक चले जाएंगे, और आगे के जितने मोड़ हो गए वहां तक प्रदेश फैले रहेंगे, तो उपपाद की अपेक्षा भी अधिक क्षेत्र वहां घटित हो सकता है। ये ऐसे दस अपेक्षा, इसलिए कहे विहार आदि शब्द है ना यहाँ, विहार आदि, तो जिसमें जो संभव है, यहाँ जो मान जो इसको कहते हैं समुद्घात जो संभव है, यहाँ आहार की या इसके तेजस वगैरह की बात है ही नहीं, यहाँ पर केवली की तो बात है ही नहीं, क्योंकि हम मोहनीय के विशिष्ट उत्कृष्ट की बात चल रही है अपनी यहाँ। तो विहार आदि की अपेक्षा इनका अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 राजु प्रमाण, वो हमने देखा था देव विहार करके जाते हैं उनकी मुख्यता से 14 राजु, क्योंकि नारकी तो अपने अपने नरकों में वो कहीं विहार नहीं करते, मनुष्य का भी विहार होगा तो ढाई द्वीप में होगा, और तिर्यंच भी अपने अपने क्षेत्र में है, विक्रिया करके कहीं जाएंगे तो भी उनका तो लिमिटेड क्षेत्र है। और मारणांतिक पद की अपेक्षा सब लोग प्रमाण बन जाता है, क्योंकि मरण करके कहीं भी जन्म लेता है एकेंद्रियों में, सूक्ष्म एकेंद्रियों में, तो पूरे लोक में मारणांतिक की अपेक्षा वो प्रदेश फैल जाते हैं। जब मारणांतिक कर रहा है तो भी वो जीव तो पंचेंद्रिय कहलाएगा, मरण के बाद जब उपपाद होगा तब उसको हम एकेंद्रिय कहेंगे, क्योंकि मरने के पश्चात दूसरा भाव चालू हो गया। इसलिए इनमें मोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग के बंधक जीवों का स्पर्शन उक्त तीन प्रकार का कहा है। इसी प्रकार त्रस आदि जो शेष मार्गणाएं मूल में गिनाई है उनमें भी यह स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। इन पंचेंद्रिय आदि मार्गणाओं में मोहनीय के अनुत्कृष्ट अनुभाग के बंधक जीवों का यह स्पर्शन उत्कृष्ट के समान ही घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका रहने का, विहार का और मारणांतिक का अनुत्कृष्ट में भी ऐसा ही घटित होगा कि वर्तमान में लोक का असंख्यात्व भाग और अतीत काल की अपेक्षा पूरा लोक। अब काय की अपेक्षा, काय की अपेक्षा का अर्थ होता है काय मार्गणा की अपेक्षा।
ये मारणांतिक जब भी होता है, मारणांतिक सबूतला तब भी मनोयोग गठन योग हो सकता है।
हाँ, मारणांतिक समुद्घात में कोई भी योग हो सकता है तीनों योग में से, और मारणांतिक बहुत बहुत जीव करते हैं, ऐसा नहीं कि कम करते हैं, बहुभाग तो मारणांतिक करते हैं। मारणांतिक करने वाले एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी जीव मारणांतिक कर सकते हैं, और ऐसी कोई इच्छा हो जाए और मारणांतिक के ऐसी नहीं है, कर्म तो बंधे हैं ऑलरेडी, आयु बंधी है, और जहां जन्म लेना है वो भी निश्चित है, तो अंतर्मूर्त पहले सहज ही वहां तक प्रदेश फैलते हैं, मरने के पहले तैयारी चालू हो जाती है जाने की। अस्ते अस्ते एक कोई लोग कहते ना, जाके आया देख लिया जगह कहाँ, फिर हंसते हंसते मरा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ऐसा कुछ कहेगा नहीं कि मैं वहां तक जाके आया, मैं स्वर्ग तक जाके मैं देख के आया, ऐसे कहने वाले तो मिलते, हमको कोई मिले थे? हाँ, अभी उसको तो मारणांतिक नहीं कहेंगे, ऐसे कहने वाले भी है ना, हो सकता है कि जैसे कल्पना तो हो सकती है, परंतु ये अवधि ज्ञान का भेद भी हो सकता है, कोई विभक्त ज्ञान का भी, विभंग ज्ञानी हो गए। ये जैसे कोई ऐसे भी कहने वाले आपने देखे होंगे, एक एक महीने के बाद मेरा मरण होने वाला है, ये फल्टन में कहीं ऐसा कुछ हो गया था और मैं स्कूटर एक्सीडेंट में मरूंगा, इतना भी बताया था उसने। पहले से उसको अंदर से ऐसा फील हुआ, ज्ञान हुआ, जो कुछ हम कहेंगे उसको। हाँ, एक को अवधि कहो या भी उसको क्या नाम दे दो, यानी ऐसे अंदर से ज्ञान की यह सहज विशेषता है कि जैसे पीछे भविष्यकाल भूतकाल का जानते हैं, भविष्यकाल का भी जानने की ज्ञान की योग्यता तो है ही। देखो ये काय की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग वाले पृथ्वी कायिक जीवों ने, जैसे हमने एकेंद्रियों में देखा था, उत्कृष्ट अनुभाग किसको होगा, पंचेंद्रियों में से उत्कृष्ट के साथ आया हुआ। अब काय मार्गणा में पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, ऐसे अलग अलग हम उसमें डिफरेंस है, और त्रस कायिक। तो उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले पृथ्वी कायिक जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यात भाग का, इसमें भी पृथ्वी कायिक कहाँ रहते हैं, पृथ्वी कायिक जीव कहाँ रहते हैं,
पृथ्वी का आधार
पूरे लोक में, क्योंकि सूक्ष्म पृथ्वी कायिक भी होते हैं, है ना। परंतु यहाँ तो क्या लेना है, एक पंचेंद्रिय में से उत्कृष्ट के साथ आए हुए पृथ्वी कायिक लेना है, तो उनकी संख्या अल्प हो जाती है, तो लोक के असंख्यात भाग में, और सर्वलोक का स्पर्श किया है। अब सर्वलोक में अतीत काल लेना कि किसी न किसी जीव ने कहीं ना कहीं पूरे लोक में जन्म लिया है अभी तक उत्कृष्ट के साथ, तो उसको अतीत काल की अपेक्षा पूरा लोक। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों ने सब लोक का स्पर्शन किया है, अनुत्कृष्ट वाले तो पूरे लोक में रहते ही हैं। ये सूक्ष्म पृथ्वी कायिक तो पूरे लोक में पाए जाते हैं, और बादर पृथ्वी कायिक जो है वो पृथ्वी है। इसी प्रकार सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अपर्याप्त, अपकायिक, सूक्ष्म अपकायिक, सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त। देखो बादर को छोड़ा है यहाँ पर, बादर पर्याप्त को छोड़ा है, हाँ बादर उनको छोड़ा है। सूक्ष्म तेजस कायिक, सूक्ष्म तेजस कायिक, सूक्ष्म तेजस कायिक पर्याप्त और सूक्ष्म तेजस कायिक अपर्याप्त। वायु कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक पर्याप्त और सूक्ष्म वायु कायिक अपर्याप्तों में जानना चाहिए। मुनि की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले बादर पृथ्वी कायिक और बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्तकों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, उस स्पर्शन का शो के ऊपर रखा है। कौन लिए ये बादर पृथ्वी कायिक और बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्त, लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का, ये तो वर्तमान क्षेत्र हुआ, और 14 भागों में से कुछ कम 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये पृथ्वीयां लिया ना सब, नीचे की पृथ्वी कितना नीचे है, सातवीं पृथ्वी कितनी नीचे है, 6 राज्य, और ऊपर की 7 राज्य, तो दोनों का अंतर 13 हो गया ना। हाँ, तो मारणांतिक आदि की अपेक्षा यहाँ लेना,
उपपाद की अपेक्षा लेना पड़ेगा ना, मारणांतिक पे तो
मारणांतिक नहीं, उपपाद की अपेक्षा, क्योंकि हम उत्कृष्ट घटित करें, बराबर है, उपपाद। तो 14 भागों में से कुछ कम 13 भाग प्रमाण, ये 14 भाग क्यों लिया, क्योंकि बाहर भी क्या कहना चाहते हैं, त्रसनाली के बाहर भी तो है ना, पृथ्वीयां है वो त्रसनाली के बाहर है कि नहीं है, पृथ्वी तो ऐसी पूरी फैली हुई है और त्रसनाली तो बीचों बीच है, तो यहाँ बाहर भी है ना, तो 14 भाग में से 13 भाग ऐसा क्यों लिया,
उत्कृष्ट
जाने वाले, हाँ तो
वो तो पंचेंद्रिय में जिसमें उत्कृष्ट,
बराबर है, पंचेंद्रिय में से ही उत्कृष्ट के साथ जाएंगे, और पंचेंद्रिय कहाँ रहते हैं, त्रस नाली में, इसलिए लिया। और ये भी मुख्यतः मनुष्य तिर्यंचों की है ना उसमें जाने वाले, क्योंकि देवनार की तो बादरों में एक इंद्रियों में नहीं जाएंगे। मारणांतिक उत्कृष्ट नहीं हो, उत्कृष्ट विभक्ति के साथ मारणांतिक एक इंद्रियों में नहीं होगा। एक इंद्रियों में जाने वाले मारणांतिक करेंगे, पर बादर एक इंद्रियों में रहते हुए मारणांतिक नहीं करेंगे। देखो, जब मारणांतिक कर रहे हैं तब उस जीव को हम पंचेंद्रिय कहेंगे। यहां बात एक इंद्रियों की चल रही है, बादर पृथ्वी कायिक की चल रही है। तो बादर पृथ्वी कायिक में जन्मने वाला जीव जब मारणांतिक कर रहा है तब वो ऑलरेडी कौन है? पंचेंद्रिय है। तो जैसे आपने कहा ना उपवाद लेना, उपवाद करते हैं जन्मने का समय, तो यहां से कोई यहां जन्मने वाला है, तो मारणांतिक पहले उस यहां तक किया था और फिर मरण हुआ तो यहां के छूट गए, क्योंकि यहां सीधा नहीं जाएंगे ना, पहले आड़ा जाएगा और फिर नीचे जाएगा जहां जन्म लेना है। तो ये पहला पद उसका, यानी पहला जो उसका मोड़ के पहले वाला आत्म प्रदेश, इसमें चले आए और फिर ये ऐसे फैले रहे जहां तक जन्म लेना है वहां तक, इसलिए वो घटित होता है 6 राजू नीचे और 7 राजू ऊपर तक, उसको उपपाद कहेंगे हम, क्योंकि अभी वो एक इंद्रिय कहलाता है। नीचे 6 राजू और ऊपर 7। अनुत्कृष्ट मिला ना, अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात वे भाग। अब ये बादर पृथ्वी कायिक की बात चल रही है और बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्तों की चल रही, सूक्ष्म को नहीं लिया। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पूरे लोक में रहते हैं और बादर पृथ्वी कायिक पृथ्वियों के आधार से पृथ्वी ही है वो, तो वो लोक का असंख्यात भाग होता है और सब लोक का स्पर्शन किया है।
ये त्रसनाली के बाहर भी रहते हैं जो पृथ्वी, तो उसकी अपेक्षा भी लोक का असंख्यात भाग
ही होता है। त्रसनाली के बाहर पृथ्वियां है फिर भी उसका, उसकी जो अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो लोक का असंख्यात भाग, क्योंकि वो तो कुछ संख्यात योजन वाली होती है चौड़ी और आड़ी, तो उसका अगर एरिया हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो लोक का असंख्यात भाग ही होगा। और सब लोग का स्पर्शन किया है, अनुत्कृष्ट वाले तो सभी है, जो जिनके उत्कृष्ट ने वो सारे अनुत्कृष्ट है और सब लोग इसलिए लिया कि वो मारणांतिक करके कहीं भी जाएंगे और कहीं से अनुत्कृष्ट के साथ इसमें भी जन्मेंगे, दोनों ओर से ले सकते हैं। अनुत्कृष्ट में तो उपपाद भी और मारणांतिक भी, दोनों ले सकते हैं। इसी प्रकार बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तकों में जानना चाहिए, यानी बादर पृथ्वी का एक, बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त लिखा है और बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तों में भी ऐसा ही है। उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले बादर अपकायिक, अपकायिक यानी जलकायिक। अप शब्द आपने मराठी में सुना, अवधि, अवधि यानी क्या? समुद्र। अप यानी जल का समुदाय, वो अवधि, अवधि कहलाते। तो बादर अपकायिक कौन से? उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले बादर अपकायिक और बादर अपकायिक पर्याप्त तथा बादर अपकायिक अपर्याप्तकों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है लोक के असंख्यात विभाग। क्योंकि ये जो जलकायिक, बादर जलकायिक की बात है, सूक्ष्म जलकायिक पूरे लोक में, बादर जलकायिक कहाँ रहते हैं? पृथ्वियों के आधार से, इसलिए उसको भी लोक का असंख्यात भाग कहा। देखो हम समुद्र आदि भी देखते हैं तो उसके नीचे तल में तो पृथ्वी है ना, तो लोक का असंख्यात भाग और सब लोक का स्पर्शन किया है।
ये उत्कृष्ट के साथ,
उत्कृष्ट के साथ
पूरे लोक कैसे घटित होगा?
उत्कृष्ट
में से आने वाले है,
अनुत्कृष्ट की बात चल रही? नहीं, उत्कृष्ट की बात, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले सब लोक का स्पर्शन जो किया है। अच्छा, बादर आपका एक पर्याप्त और अपर्याप्त, एक मिनट, ऊपर क्या लिखा था हमने? नहीं, देखो देखो, हाँ हाँ है ना, सूक्ष्म सर्वत्र है, हाँ
सूक्ष्म है ना,
सूक्ष्म अग्नि भी है, हाँ, पृथ्वी भी है। ये महास्कंद काहे से बना है बोलो, मालूम है महास्कंद क्या है? पूरे लोक प्रमाण एक स्कंद है। स्कंद का अर्थ क्या होता है? वो सभी पुद्गल एक दूसरे से जुड़े हुए है ना। तो ऐसा कौन सा है महास्कंद, काहे से बना है, कौन से परमाणु? पृथ्वी कायकों का ही समूह है वो। ये तो आठ पृथ्वियां तो है ही है, और बाकी जो बीच में वो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक है, तो सबका एक स्कंद है। तो हम पृथ्वी में से चल रहे हैं, सूक्ष्म में से। देखो आपका प्रश्न जो है ना, बादर को यहाँ क्यों लिया पूरा लोक, और ऊपर क्या लिया था बादर पृथ्वी कायिक के लिए, क्या लिखा था? हाँ कुछ कम 13 भाग लिया, और अनुत्कृष्ट के लिए सब लोग का लिया था। यहाँ सब लोग का हम ऊपर देखेंगे। बादर पूरी भी हो गया, बादर आउ पज्जत्ता पज्जत्ताणम उपकस अनुभाग केवड़ी खेतम पोषिदम लोगस असंख्य जित भागो सव लोगो वा। हाँ वात वलय में, अच्छा घनोदधि हाँ वहीं पर होगा, मगर वो सूक्ष्म होगा ना कि बादर होगा, क्योंकि बादर अपर अपकायिक को अलग निकाला उन्होंने, पर्याप्त भी लिए। आप कहते वो बात सही है, ये जो वात वलय होते हैं ना, तीन वात वलय के नाम क्या है? घनवात, घनोदधि, घनवात और तनुवात। फिर भी तनुवात को छोड़ना पड़ेगा, आगे देखेंगे अगर आपका एक ही कहीं बात आती है तो, ये विशेषार्थ में देखते हैं। वहाँ कुछ अलग से नहीं बताया अब का एक उनका, उसमें नहीं मिलेगा, लिख के रखना किसी पेपर पर अब का एक का पूरा लोक कैसे है। क्योंकि बादर को लिया ना यहाँ पर सूक्ष्म, तो ठीक है और सब लोग का स्पर्शन किया है, आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का भी स्पर्शन कहना चाहिए, वो तो अनुत्कृष्ट में तो पूरा लोक घटित होता है। बादर तेजस्कायिक और बादर तेजस्कायिक अपर्याप्तों में बादर पृथ्वी कायिकों के समान भंग है। देखो अब कायिक को ही अलग निकाला उन्होंने, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले बादर तेजस का एक पर्याप्त को ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। जो अभी इसमें दो मत है, तो दोनों मत बताएंगे। जो सब पृथ्वियों में उनका अस्तित्व मानते हैं, अग्नि का सभी पृथ्वियों में अस्तित्व मानते हैं, उनके मत से 14 भागों में से 13 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। बादर वायु काय और बादर वायु काय अपर्याप्तकों में, हाँ दूसरा मत सभी जगह नहीं पाया जाता, इतना ही यहाँ पर भी अग्नि नहीं थे ना पहले, ऐसे कुछ था ना, बाद में उत्पन्न हुआ और फिर उसको प्रिजर्व करते थे अग्नि की बहुत स्केयरसिटी थी। यह दूसरा मत बताया नहीं उन्होंने। देखो उत्कृष्ट अनुभाग वाले बादर वायु का पढ़ेंगे, नीचे से चौथी लाइन, बादर वायु का है और बादर वायु का अपर्याप्त को में बादर अपकाय के समान भंग है। देखो वायुकाय में तो ठीक है, अपकायों के समान भंग है क्योंकि वो तो वायुकाय तो
वो भी उत्कृष्ट वाला
वात वाले तो सर्वत्र बाहर भी है ना, वहां तक मारणांतिक करने वाले ले सकते हैं। यानी उसी का अर्थ होता है वहां पर अपकाय भी है बादर भी, और यहाँ अपर्याप्त के लिए बादर वायुकाय और बादर वायुकाय अपर्याप्तकों में बादर अपकाय के समान भंग है। परंतु अपकायिक में पर्याप्त भी लिए थे अपर्याप्त भी लिए थे। उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले बादर वायुकायिक पर्याप्तकों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है, पर्याप्तों को इसलिए अलग निकाला है
लोक के संख्या,
हाँ लोक के असंख्यातवे भाग का ये वर्तमान क्योंकि उत्कृष्ट के साथ ले आने वाले हैं, और सर्व लोक का स्पर्शन किया है,
ये बादर वायु का एक तो पांच राजु प्रमाण में रहते हैं ना, तो लोक का संख्यात्व भाग देखा था ना आगे हमने,
हाँ लोक का संख्यात्व भाग,
तो यहाँ पे असंख्यात्व भाग बताए
लोक का असंख्यात्व भाग क्योंकि वो पंचेंद्रिय में से उत्कृष्ट के साथ आने वाले हैं,
तो भी जाने वाले तो उपपद की अपेक्षा लोक का संख्यात्व भाग हो जाना चाहिए ना, क्योंकि उनके रहने का ठिकाना लोक का संख्या,
ये तो असंख्यात्व भाग वर्तमान का है और अतीत की वो उत्कृष्ट की बात चल रही है ना, लोक का असंख्यात्व भाग जो लिखा है तो वर्तमान का है।
वायु का ऐसे हमने क्षेत्र क्या दिखा था,
क्षेत्र वो लोक का संख्यात्व भाग होता है,
तो जो उत्पाद की अपेक्षा पंचेंद्रिय में से उत्पन्न होने वाले है
हाँ
उसका भी संख्यात्व भाग होना हो जाना चाहिए ना,
संख्यात्व भाग वो रहते हैं परंतु उनकी संख्या कम है, अनुत्कृष्ट में संख्यात्व भाग ले लेंगे, उत्कृष्ट के साथ आने वाले जीव अत्यंत अल्प है तो उनकी अवगाहना की अगर हम संख्या मल्टीप्लाइड बाय अवगाहना लेंगे तो लोक का असंख्यात्व भाग घटित होगा। देखो लोक के असंख्यात्व भाग का उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले बादर वायु का एक पर्याप्त कोने कितने, फिर सर्वलोक का भी स्पर्शन लिखा है यहाँ पर, तो सर्वलोक का यानी वो वात वाले में भी होते हैं इसलिए सर्वलोक लिया, कैसे लेना उसका, वैसे लेना पड़ेगा। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के संख्यात विभाग, अभी संख्यात्व है क्योंकि पांच राजू तक ये बादर पर्याप्त जीव पाए जाते हैं और जिनके उत्कृष्ट ने वो सभी अनुत्कृष्ट है, तो उनके वर्तमान में भी लोक का संख्यात्व भाग होगा और सब लोक का स्पर्शन किया है। सब वनस्पति कायिक और सब निगोदियों में एकेंद्रिय के समान भंग है। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्तकों में बादर पृथ्वी का एक के समान भंग है। इसका ऐसा अर्थ लेते हैं कि उनकी आयु छोटी है और वो मारणांतिक करते हैं, पृथ्वी के आश्रय से रहते वो तो ठीक है, परंतु यहाँ भी बादर पृथ्वी कायिक में भी हमने क्या देखा था, सब लोग भी देखे थे ना अनुत्कृष्ट में, सब लोग 14 में से 13 देखे थे। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर लिए और उनके पर्याप्त अपर्याप्त लिए, निगोद है उनकी संख्या अनंत है, तो वहां तो घटित होता है ज्यादा क्षेत्र। अभी इसी का विशेषार्थ पढ़ेंगे अभी हम। एक इंद्रियों में मोनिय के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के बंधकों का जिस प्रकार स्पर्शन घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिकों में तथा इन चारों के सूक्ष्मों में और सूक्ष्मों के पर्याप्त और अपर्याप्तकों में घटित कर लेना चाहिए। उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति से युक्त बादर पृथ्वी कायिक और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन नीचे कुछ कम छह और ऊपर कुछ कम सात राजू कुल कुछ कम 13/14 राजू संभव होने से यह उक्त प्रमाण कहा। इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और सब लोक प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। यहां तक जो स्पर्शन घटित करके बतलाया है उसे ध्यान में लेकर स्थावर कायिक जीवों के शेष भेदों में भी स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। अभी शेष भेदों में वैसा ही घटित करना ये यहां लिखा है और वहां अपकायिक का कुछ अलग बताया है ना। मात्र बादर अग्नि का एक पर्याप्त जीवों का स्पर्शन दो प्रकार से बतलाया है। प्रथम तो उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति की अपेक्षा लोक के असंख्यात भाग प्रमाण स्पर्शन बतलाया है। सो यह स्पर्शन बतलाते समय बादर अग्नि का एक पर्याप्त जीव सब पृथ्वियों में उपलब्ध होते हैं, यह दृष्टि मुख्य नहीं है, इसलिए असंख्यात भाग का। तथा दूसरी अपेक्षा से जो कुछ कम 13/14 राजू प्रमाण स्पर्शन कहा, सो ऐसा कहते समय उन आचार्यों का अभिप्राय मुख्य रहा जो यह मानते हैं कि बादर अग्नि का एक पर्याप्त जीव सब पृथ्वियों में उपलब्ध होते हैं, इसलिए उनकी अपेक्षा ये 13/14 मारणांतिक आदि की अपेक्षा से बताया। यानी पंचेंद्रिय उनमें मारणांतिक करने वाले, यानी इनमें उपपाद समझना। शेष कथन सुगम है। अब योग की अपेक्षा। उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले काय योगियों ने लोक के असंख्यात भाग का, ये तो वर्तमान का, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग वाले काय योगी कौन कौन है? हाँ,
संगी पंचेंद्रिय
और मरकर जाने वाले वो सभी काय योगी है। भले विग्रह गति में है, कारमान काय योग होगा या मारणांतिक में कोई भी योग हो सकता है उनका, तो उनके उत्कृष्ट है। तो कहते हैं लोक का असंख्यात भाग उनका वर्तमान 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का ये तो उसका विहारवत, और सर्वलोक का स्पर्शन मारणांतिक कहो उपपाद भी कहो तो चले। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों ने सर्वलोक का स्पर्शन किया है, क्योंकि काय योग तो पूरे लोक में पाए जाते हैं। ये एकेंद्रियों के तो एकमात्र काय योग ही होता है, तो उनमें सर्वत्र जीव पाए जाते हैं, इसलिए उसका पूरा लोक लिया, स्पर्शन पूरा लोक। इसी प्रकार औदारिक काय योगियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है उनमें 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण स्पर्शन नहीं है। मयंक भाई ये क्यों कहा ऐसा? औदारिक काय योगियों में 8/14 स्पर्शन क्यों नहीं है? हाँ, ये विहार करने वाले कौन है? देव है, तो उनके तो वैक्रिय काय योग होगा, या मनोयोग वचन योग वालों को तो कह सकते हैं, क्योंकि वहां भी मनोयोग वाले हैं, यहाँ भी है, तो मनोयोग वचन योग में तो घटित होगा, परंतु देव विहार करते हैं तो उनमें वैक्रिक कायोग घटित होगा। वो एकरिक मिश्र होगा कि नहीं होगा?
नहीं,
नहीं। अपर्याप्त अवस्था में उनका विहार नहीं है। उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले औदारिक मिश्र का योगियों ने, यानी मरकर जो औदारिक मिश्र के साथ उत्पन्न हुए हैं, कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात विभाग का और सर्वलोक का स्पर्शन किया है, क्योंकि ये मरकर कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, अपर्याप्तों में भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो औदारिक मिश्र है। परंतु असंख्यात विभाग क्यों कहा फिर? क्योंकि ऐसे जीव अल्प है ना, पंचेंद्रियों में से जाते हैं वहां पर। हाँ, उत्कृष्ट का बंद कर।
ये औदारिक का योग में उत्कृष्ट विभक्ति वाले पूरे लोक में नहीं हो सकते है ना,
क्योंकि औदारिक के औदारिक मिश्र क्या
औदारिक
औदारिक का योग में हाँ
पूरा लोक उत्कृष्ट विभक्ति के साथ
पूरा लोक होगा कभी अतीत काल की अपेक्षा, वर्तमान में नहीं।
नहीं, पर औदारिक मिश्र में उसका जो अंतर्मुख में जो उसका अनुभव कम हो जाता है, वो तो औदारिक मिश्र में ही कम हो जाएगा। तो औदारिक
किसका किसका अनुभव?
जो पंचेंद्रिय में से उत्पन्न होते हैं एकेंद्रिय में।
हाँ, पंचेंद्रियों से जो एकेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं हाँ।
उनके औदारिक काय योग्य तक अरे होने तक ये उत्कृष्ट अनुभाग नहीं होगा।
हाँ,
तो पूरा लोक कैसे घटित होगा? उत्कृष्ट विभक्त के द्वारा
औदारिक मिश्र में क्यों उसका वो अंतर्मूर्त हाँ, तो अंतर्मूर्त औदारिक मिश्र के बाद भी रहेगा उनका, वहाँ पर्याप्त भी जीव है ना, सूक्ष्म पर्याप्त भी है कि नहीं वहाँ पर?
हाँ, पर वो पर्याप्ति प्राप्त होने तक ये उत्कृष्ट अनुभव कम नहीं हो जाएगा?
नहीं होगा। तभी तो देखो ऊपर क्या लिखा, औदारिक का योगियों में भी ऐसा ही जानना चाहिए, यानी पूरा लोक है ना वहाँ पर। अब ऐसा भी ले लो आप, औदारिक का योग में समुद्घात करेगा कि नहीं? अब वो मिश्र के बाद रहता है कि नहीं वो बात छोड़ दो।
हाँ, क्योंकि पहले हमने देखा था कि मिश्र के काल में
उसका उत्कृष्ट अनुभव कम हो जाता है। अब औदारिक
का
औदारिक में मारणांतिक करेगा ना वो, औदारिक वाले मारणांतिक करने वाला औदारिक का योगी है पंचेंद्रिय, और मारणांतिक करेगा तो पूरे लोक में फैलेगी कहीं भी। और औदारिक मिश्र में तो औदारिक मिश्र में मारणांतिक नहीं कहेंगे, औदारिक मिश्र में तो आने वाला जीव है, वो उत्कृष्ट के साथ आया हुआ है उसमें।
तो औदारिक मिश्र के साथ पूरा लोक होगा पर
हाँ, पूरा लोक हो सकता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों ने सर्व लोक का स्पर्शन किया है, क्योंकि ये औदारिक मिश्र किसके होता है? एक तो एकेंद्रियों में होता है, कौन सभी में होता है मनुष्य और त्रिवेंचो में, परंतु अपर्याप्तकों में जो है ना, एकेंद्रिय अपर्याप्त पूरे लोक में रहते हैं, लब्धि अपर्याप्तकों में तो मात्र औदारिक मिश्र ही होता है, कारमान कोई अलावा है। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले ने ये पढ़ा, सर्वलोक का स्पर्शन किया। इसी प्रकार कार्मण का योगी, कार्मण का योगी में उत्कृष्ट जो पंचेंद्रियों में से उत्कृष्ट का बंद करके कहीं भी जन्मने वाला है, तो उसको कार्मण का योग में उत्कृष्ट होगा। तो ऐसा कार्मण का योग वर्तमान का क्षेत्र कितना होगा उसका?
लोक
का संख्या तो, क्योंकि वो जीव अल्प है इसलिए, और अतीत काल की अपेक्षा पूरा लोक। नपुसक वेदी क्रोधी मानी मायावी लोभी मति अज्ञानी क्षुत अज्ञानी असंयत, ये नपुसक वेदी पूरे लोक में है, ये केंद्रीय सारे नपुसक वेदी है, इसलिए नपुसक वेदी वाले को लिया। स्त्री वेदी पुरुष वेदी वाले को तो लोक का संख्या तो भाग में ही रखेंगे। असंयत अचक्षु दर्शन वाले कृष्ण लेशा वाले, जिसमें एकेंद्रिय घटित होते हैं उसमें ये सारी मार्गणा लिए। नील लेशा वाले कापोत लेशा वाले भव्य अभव्य मिथ्या दृष्टि असंगी आहारक और अनाहारकों में जानना चाहिए। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले वैक्रिय काय योगियों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? लोक के असंख्यात विभाग का, उनका वर्तमान का क्षेत्र 14 भागों में से कुछ कम 13 ये विहारवत का सॉरी कुछ कम तेरह हाँ सॉरी कुछ कम आठ है वो विहारवत वाले ने 14 भागों में से कुछ कम जो 13 लिखा है ना कौन है ये सारे वैक्रिय काय योग यानी देव भी है और नारकी भी है और उस अवस्था में मारणांतिक भी करेंगे और कुछ कम आठ भाग का जो लिखा है वो विहार की अपेक्षा एक कुछ कम 13 समझ में आए हाँ अश्विनी देखो क्या है कुछ कम 13 कैसे गठित करना ये लोकाकाश है वैकृत काय योग वाले जीव कौन कौन है देव है और नारकी है तो उनमें उत्कृष्ट अनुभाग कब होगा तो अपने अपने जगह रहते हुए भी होगा विहार करके जाएंगे तो भी होगा परंतु अपने अपने जगह रहते हैं तो लोक का असंख्यात भाग होता है विहार करके जाएंगे तो हमने देखा तीसरे नरक तक और ऊपर 6 राजो ऊपर और नीचे 2 राजो यानी 8 राजो उसका होता है 8/14 राजो अब हमको लेना है मारणांतिक तो ये वैकृत काय योग वाले मारणांतिक कहाँ करेंगे कहाँ जाएंगे मारणांतिक करके हाँ बरोबर है दोनों ओर से मध्य लोक तक आएगी तो नारकी नीचे 6 राजो से ऊपर आते हैं और देव
नीचे वाले देव ऊपर आठवीं पृथ्वी तक भी जाते हैं
हाँ देव वो मारणांतिक करके 8वीं पृथ्वी तक यानी 7 राजो ऊपर तक क्योंकि ये जो उत्कृष्ट अनुभाग वाले जो है वो ऊपर से मारणांतिक करके आने वाले कहाँ तक के ले सकते हम सहस्रार तक के ही उत्कृष्ट बंद करेंगे तो उनकी अगर बात लेंगे तो ये डिस्टेंस कम होगा तो जो देव मिथ्या दृष्टि देव कहाँ के भवनत्रिक और सौधर्म ईशान वाले वो मारणांतिक कहाँ करते हैं तो ये 8वीं पृथ्वी में कर सकते हैं एक इंद्रियों में जन्मने वाले जहाँ सिद्धशिला है वो सिद्धशिला के जीव होके जन्मेंगे उससे कुछ नहीं सिद्धों के साथ कोई संबंध नहीं उसका तो ये 7 राजो ऊपर मारणांतिक और ये नारकी जो यहाँ ऊपर तक मारणांतिक करेंगे या मनुष्य नरक में करेंगे परंतु वो मनुष्य करेंगे तो उसको औदारिक कायोगी कहेंगे हमको वैकृत कायोगी वाला चाहिए इसलिए नीचे से ऊपर और यहाँ देव ऊपर करने वाले इस तरह से लेना उसको 7 और 6 13 राजो होते हैं सेकंड लाइन उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले वैकृत मिश्र अभी वैकृत मिश्र लिए हैं वैकृत कायोग वाले तो मारणांतिक ले सकते हैं वैकृत मिश्र तो वहां उत्पन्न होने पर होते हैं तो जो उत्कृष्ट के साथ आएंगे वैकृत मिश्र में वो उत्कृष्ट वाले होंगे जो अनुत्कृष्ट के साथ आते हैं वो अनुत्कृष्ट वाले होंगे वो कितना क्षेत्र का स्पर्शन किया है लोक के असंख्यातवें भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है आप कहेंगे जैसे अन्यत्र उपपाद में लिया था यहां भी हमने देखा था ना वैकृत कायोग में मारणांतिक किया जब हम कहीं कहीं कहते ये जो उत्पन्न होने वाले एक इंद्रियों में तो उपपाद लेते हैं पंचेंद्रिय मरा उत्कृष्ट अनुभाग के साथ और कहीं का भी एक इंद्रिय हुआ तो उसके भी पाया जाता है वैसे वैकृत मिश्र में उपपाद क्यों नहीं लिया उपपाद का अर्थ क्या होता है प्रदेश वहां से वहां तक फैलते हैं जहां से मरण हुआ और यहां से आगे एक मोड़ तक तो नहीं रहेगी बाद में एक मोड़ के पश्चात प्रदेश फैले रहते हैं ऐसे वैकृत मिश्र में क्यों नहीं लिया हाँ उपपाद जो कहेंगे और जो प्रदेश फैले हैं वो तो कारमाण का योग में होंगे जहां विग्रह वाली गति होती है वैकृत मिश्र का अर्थ क्या है वहां पहुंच गया है और वहां शरीर का ग्रहण शुरू हो गया तभी तो वैकृत मिश्र कहेंगे तो वो अपने अपने रहने के जगह होगा
ये रुजुगति से जो जाएगा वो जीव को प्रदेश फैलते हैं जो रुजुगति से जाएगा
रुजुगति से जाते हैं
मिश्र का योग जिसका चालू हो जाता
हाँ, है इमीडिएट वैकृत
मिश्र तो उसका प्रदेश का फैलना होता है पहले
प्रदेश का फैलना कैसे होगा वहाँ उत्पन्न वहाँ पहुँच गए और वहाँ शुरू हो उसके अभी पीछे कोई उसके पूछ नहीं रही बात पहुंच गए, एक समय में पहुंच गए, बीच में स्प्रेड नहीं है। रुजुगति का अर्थ होता है बिना विग्रह के, बिना मोड़ के जाता है, उसको कहते हैं रुजुगति से गया। तो यहाँ एक समय में मरण हुआ और वहां एक समय में ही जन्म हुआ, नेक्स्ट समय में। उसका पहला ही समय आयु का है, देव आयु का हम कहेंगे, और पहला ही समय है शरीर ग्रहण करने का। जो विग्रह से जाते हैं, मोड़ से जाते हैं, तो मोड़ कितने मोड़ है, एक मोड़ है, तो एक समय के लिए वो कारमान का युग में रहे और दूसरे समय में वैकृत मिश्र हो गया, वहां पहुंच गए, अपने जन्म के स्थान पर पहुंच गए और शरीर का ग्रहण भी शुरू कर दिया।
रुजुगति से जाते हैं उनका तो कारमान का योग होता ही नहीं है ना।
रुजुगति वालों को कारमान का योग नहीं, वो आहारक का आहारक ही रहता है। आहारक यानी नौ कर्म का ग्रहण यहाँ भी चल रहा था। मरण के समय भी हम शरीर के परमाणु लेते हैं और उसी समय सारे के सारे छोड़कर अन्य पर्याय में चले जाते हैं। जो रुजुगति से जाता है वो इमीडिएट नेक्स्ट समय में वहां के परमाणु का ग्रहण शुरू करता है, उसको कहते हैं रुजुगति। बीच में कारमान का योग नहीं है। कारमान का योग है तब जीव अनाहारक कहलाएगा। अनाहारक यानी शरीर के परमाणु का ग्रहण नहीं करता है, उसको अनाहारक कहेंगे। हाँ, मरण के समय तो ऐसा ही है, क्योंकि एक समय में ही ग्रहण किए हैं और जीव ही उन सबको छोड़कर चला गया है, क्योंकि दूसरे समय में हम नहीं कहेंगे छोड़ते, क्योंकि दूसरे समय तो नया शरीर ग्रहण किया उसने,
वही समय में किया ना, इधर
नया शरीर ग्रहण करना है। यहाँ मरण का समय ले रहे ना, एक समय में मरण हुआ, दूसरे समय में जन्मा, वहां नहीं होगा। कारमान का योग है, विग्रह वाली गति है, वहीं पर गत्यानुपूर्वी का उदय होता है। गत्यानुपूर्वी कर्म जो विग्रह गति में ही उसका उदय रहता है, अन्यथा नहीं, वो ऐसा पड़ा रहता है। फिर इसी प्रकार
रुजुगति से जाने वाले भी मरणांतिक कर सकते हैं।
हाँ, रुजुगति से जाने वाले भी उसके पहले, जाने के पहले मरणांतिक करेंगे, कर सकते हैं। यानी मरणांतिक है तब तक उनका सीधा रुजुगति है, नहीं सीधा, अभी यहाँ मरा और यहाँ जन्मने वाले, तो ऐसे उसके प्रदेश फैले मरणांतिक में, और मरण होते ही बस यहाँ उठ गए और वहां उसी समय पहुंच गए ना, वहां फिर बीच में अंतर नहीं उसके, यहाँ मरण और यहाँ जन्म, नेक्स्ट समय विग्रह होगा तो क्या होगा, ऐसा और ऐसा
मोड़ होगा,
ये मोड़ वाला है ना। तो मरण हुआ, पहले तो मरणांतिक ऐसे फैले थे, मरण हुआ तो ये उठ गया, प्रदेश ऐसे हो गए सारे, और फिर ये ऐसे भी फैले हैं, और फिर वो मोड़ के बाद
रुजुगति से जाने वाला,
रुजुगति से
किया है,
हाँ,
उसका
मरण,
यहाँ पे मरण हुआ और दूसरे समय वहाँ पे उत्पन्न हुआ,
पहुंच गया,
तो वहाँ पे उसका
प्रदेश फैले हुए नहीं है, उपपाद में प्रदेश फैले हुए नहीं है रुजुगति में, क्योंकि यहाँ मरण हुआ तो वहाँ नेक्स्ट समय में वहाँ सारे प्रदेश वहाँ पहुंच गए। ये तो समय भी इतना सूक्ष्म है, और भले वो लंबा लाइन कितनी भी बड़ी हो, 7 राजू की हो या 14 राजू की हो, तो एक समय में पहुंच जाते हैं। हाँ, देखो ये अभी हमने जो पढ़ा है, इसी प्रकार आहारक का योगी, ये आहारक का योगी कब होते हैं, यहाँ आहार अनाहार की बात नहीं है, मुनि जो आहारक शरीर बनाते हैं उनकी बात है। आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी कहाँ रहते हैं वो, ये मनुष्य ही होते हैं ना, तो लोक का असंख्यात अभाव, और अतीत काल की अपेक्षा
वो भी
क्योंकि मनुष्य लोक छोड़ के बाहर जा ही नहीं सकते। अपगत वेदी, अकषायी, मनपरे ज्ञानी, ये सारे ही मनुष्य में ही संभव है मार्गणाएं। संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, और यथाख्यात संयतों में जानना चाहिए। विशेषार्थ कौन सा? हाँ ऊपर नौ और छह पंद्रह होते हैं। हाँ देखो जब ऊपर दो और सात जब लेते हैं तो जो विहार कर गए हैं और उस अवस्था में जिन्होंने मारणांतिक किया है उसको ले सकते हैं। अभी सौधर्म अपने जगह में बैठे है, कोई सौधर्म देव में कोई देव जो एक इंद्रिय की जिन्होंने पर्याय बांधी है तो अपने स्वस्थान में है तो ऊपर कहाँ तक करेंगे? सात राज्य। हाँ भवनवासी के भी ले लो या मध्य लोक में है कोई कहीं तो वो जो दो है वो तो कॉमन है या ओवरलैपिंग है रिपीटेड ही है इसीलिए। नौ राजो तो हम ऐसा घटित करते हैं अकेले उनका लेना है तो नौ लेना है। हाँ अकेला देवों का लेना है तो नौ क्यों? दो राजू नीचे गमन कर सकते हैं और ऊपर मारणांतिक नीचे गए और वहां से मारणांतिक किया तो कितना हुआ? नौ राजू क्योंकि ऊपर की पृथ्वी सात राजू ऊपर है। ख्याल में आई बात? हाँ अब ये मध्य लोक में रहने वाले कोई भी अंतर करेंगे हाँ सात राजू होगा। अब ज्योतिषी करेंगे तो जहां रहते वहां से ऊपर करेंगे परंतु वो गमन करके नीचे आ सकते हैं और उस पोजीशन में ऊपर अगर मारणांतिक करते तो इतना अंतर घटित हो सकता है। ये बात है विशेषार्थ। मोहनीय की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है। विहार आदि की अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजू हैं और ऐसे जीव एकेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं। अभी उत्कृष्ट बंद कर रहे ना, अतः इस अपेक्षा से सब लोग प्रमाण स्पर्शन संभव है। इसलिए योग की अपेक्षा सामान्य कायोगियों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। ये ख्याल में आई बात? सामान्य कायोग ने वहां का योग लिया, वो औदारिक है कि वैकरिक है कि मिश्र है कि कारमाण है, वो बात यहां नहीं ली। इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का सर्वलोक प्रमाण स्पर्शन है यह स्पष्ट है। औदारिक कायोगियों में इसी प्रकार स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। औदारिक कायोगियों में भी इसी प्रकार ने एक इंद्रियों में उत्पन्न होते हैं तो मारणांतिक किया है तो पूरा लोक होगा उनका। मात्र कुछ कम आठ बटे चौदह राजू प्रमाण स्पर्शन देवों के विहार व स्वस्थान आदि की मुख्यता से कहा है। आठ बटे जो चौदह कहा था तो देव विहार करते उसकी अपेक्षा कहा था, पर देवों के औदारिक का योग नहीं होता इसलिए औदारिक का योग वालों में इस स्पर्शन का निषेध किया है। आठ बटे चौदह वाला स्पर्शन उनमें नहीं कहेंगे विहार वगैरह की अपेक्षा। उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले औदारिक मिश्र का योगियों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण प्राप्त होता है। इसलिए इनमें यह उक्त प्रमाण कहा है तथा औदारिक मिश्र कायोग का स्पर्शन सर्वलोक है। इसलिए इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का सर्वलोक प्रमाण स्पर्शन कहा। कार्मण कायोगी आदि मूल में गिनाई गई अन्य मार्गण वाले जीवों में औदारिक मिश्र कायोगी जीवों के समान ही स्पर्श प्राप्त होता है। इसलिए इनमें औदारिक मिश्र कायोगी जीवों के समान स्पर्शन कहा है। वैकरेक कायोगियों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग उनका अपना रहने का ठिकाना विहार आदि की अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह राजू प्रमाण और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 13/14 राजो प्रमाण है। ये अभी हमने देखा ना, नीचे जाते हैं वहां से ऊपर तक मारणांतिक करते हैं। इनके इन सब स्पर्शनों के समय उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति संभव है, इसलिए इनमें दोनों विभक्ति वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। वैक्रेक मिश्र का योगियों का सब प्रकार का स्पर्शन लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही है, इसलिए इनमें दोनों विभक्तियों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। आगे मूल में जो आहार का योगी आदि मार्गणाएं गिनाई है उनका स्पर्शन भी लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, अतः उनका कथन वैकृत मिश्र का योगियों के समान जानने की सूचना की है। यानी वैकृत मिश्र का योगियों के समान उनका रहने का ठिकाना नहीं है। वैकृत मिश्र का योगी तो अपने अपने स्वर्गों में और नरकों में होंगे, परंतु कथन क्या है, लोक का असंख्यात भाग। वही कथन आहार का योगियों के लिए भी लागू होगा कि वो लोक के असंख्यात भाग में वर्तमान और अति स्पर्शन पाया जाता है। इतनी समानता है, रहने की समानता नहीं है, क्योंकि ये तो मुनि है और वो तो वैकृत मिश्र वाले तो देव और नार की है। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले विभंग ज्ञानियों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यात भाग का उनका रहने का ठिकाना 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का, क्योंकि विभंग ज्ञानी देव है और वो विहार करके 8 भाग में जाते हैं, और सब लोक का स्पर्शन किया है। ये जो सब लोक का लिखा है वो, हाँ, मारणांतिक कौन करने वाले हैं, करने वाले कौन है मारणांतिक, मनुष्य और तिर्यंच, क्योंकि सब लोक में करने वाले तो देव नार के नहीं हो सकते, इसलिए मनुष्य तिर्यंच को लिया। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले आभि निबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यात भाग का, क्योंकि ये कौन से जीव है, संगी पंचेंद्रिय है, चारों गति के संगी पंचेंद्रिय जीव, ये सम्य दृष्टि हुए तो आभि निबोधिक, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी कहा उनको। फिर कहते हैं 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का, क्यों लेना ऐसा, देवों की अपेक्षा विहार करने वाले। इसी प्रकार अवधि दर्शन वाले सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, सब में अपना अपना उत्कृष्ट अलग होगा, परंतु ये जो कथन है ना लोक का असंख्यात भाग, ये उनके लिए कॉमन होगा। उपशम सम्यक दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टियों में जानना चाहिए। विशेषार्थ, विभंग ज्ञानियों ने वर्तमान में लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का विहारवत स्वस्थान की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राजू का और मारणांतिक पद की अपेक्षा सब लोक का स्पर्शन किया है। मारणांतिक सब लोग कहते तो मनुष्य तिर्यंच समझना हो। इनके इन सब स्पर्शनों के समय दोनों विभक्तियां संभव है, उत्कृष्ट भी हो सकती है अनुत्कृष्ट भी, इसलिए इनमें दोनों विभक्ति वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा। आभि निबोधिक ज्ञानी आदि जीवों ने वर्तमान में लोक के असंख्यात भाग का और विहार आदि की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राजू का स्पर्शन किया है। इनके इन दोनों प्रकार के स्पर्शन के समय उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति संभव है, इसलिए इनमें दोनों विभक्तियों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। यद्यपि इन मार्गणाओं में उपपाद पद की अपेक्षा, कौन सी मार्गणाएं चल रही है, आभि निबोधिक ज्ञानी, यानी आभि निबोधिक किसको कहते हैं मालूम है, नहीं मालूम, हाँ पूछना, कोई भी नया शब्द आता है ना, मति ज्ञान है ना, सुमति ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान को आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। आभि क्यों? आभि यानी अभिमुख, उसको अभी हुआ, वो अभी का आभि हो जाता है ना, जैसे शरीर का शारीरिक होता है वैसे अभिनिबोध से आभिनिबोधिक शब्द तैयार हुआ। अभी यानी सन्मुख, नी यानी निश्चित नियत, और बोध यानी ज्ञान। ये जो है मति ज्ञान, कौन सा? इंद्रिया मन के द्वारा जानते हैं। तो ये जो इंद्रिया किसको जानेगी? अपने निश्चित विषय को उसके सन्मुख होकर जानती है। अभी ये पेंसिल को मैं जान रही हूँ तो उसमें निमित्त है ना, चक्षु इंद्रिय का निमित्त है, और वो उसके बीच फोकस में हो आनी चाहिए, जो कुछ है सामने होनी चाहिए, और इसका विषय भी निश्चित है, कौन सा? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। चक्षु इंद्रिय के द्वारा हमें आवाज का ज्ञान नहीं होगा, तो वो उसका निश्चित अपना विषय का ज्ञान करती, इसलिए उसको कहते आभिनिबोधिक यानी मति ज्ञान, सुमति ज्ञान को आभिनिबोधिक ज्ञान कहते। तो यहाँ कहते हैं ऊपर बात है ना, आभिनिबोधिक ज्ञानी आदि। हाँ, यद्यपि इन मार्गणों में देखो विशेषार्थ का नीचे से पांचवी लाइन, यद्यपि इन मार्गणाओं में उपपाद पद की अपेक्षा, उपपाद यानी इन मार्गणाओं में यानी वो अभिनिबोधिक वाले है और मरकर अन्यत्र जन्म ले रहे हैं, तो उनमें उपपाद पद होगा कि नहीं होगा? गुणस्थान कौन सा होगा उपपाद के समय?
चौथा
गुणस्थान। तो उपपाद की अपेक्षा कहाँ कहाँ हो सकता है इनका? तो कुछ कम 6/14 राजु प्रमाण स्पर्शन भी उपलब्ध होता है। क्या कहते हैं? उनमें तो पहले लोक का असंख्यात भाग उनका रहने का ठिकाना, 8/14 विहार की अपेक्षा बताया। अब यहाँ कहते हैं कुछ कम 6/14 राजु प्रमाण स्पर्शन भी उपलब्ध है।
ये पहली पृथ्वी से सर्वार सिद्धि तक के सभी उपपाद में ले सकते
हैं। पहली पृथ्वी से लेकर
सर्वार सिद्धि तक के सभी देव,
हाँ, अभिनिबोधिक ज्ञान में जन्म ले गए।
हाँ, हाँ। तो यहाँ पे 6 राजु के,
परंतु
अभिनिबोधिक ज्ञान के साथ
नरक में से जो जन्मते हैं मनुष्य में, वो वेदक समय दृष्टि है, नारकी है, और मनुष्यों में जन्म लेंगे
तो ज्यादा हो जाएगा ना, ये तो 6 राजू बताया।
तो ये क्या कहना चाहते? इसका अंतर्भाव कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण स्पर्शन में हो जाता है, इसलिए इसका अलग से निर्देश नहीं किया है। अभिनिबोधिक ज्ञान में एक्चुअली उसमें मारणांतिक भी ले सकते हैं ना, उपपाद पद लिया उन्होंने।
छठी पृथ्वी के जीव भी मरण के समय सम्यक, हाँ, 12 चाहिए।
ऊपर क्या लिखा है? ये तो विशेषार्थ है। हाँ, क्योंकि उपपाद पद अगर लिया है, परंतु मूल में 8/14 लिखे हैं। देखो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट मूल में मैं देख रही हूँ, 70 पुष्प अंतिम लाइन, उसमें से फिर 71 पर आते हैं, क्षुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया, लोक के असंख्यात हुए, और 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का, ये तो विहार की ही अपेक्षा बता दी उन्होंने। और यदि हम मारणांतिक भी उनमें ले सकते हैं,
12 हो जाएगा।
और मारणांतिक करने वाले तो यहाँ से सर्वार सिद्धि तक भी ले लो, ऊपर 7 और नीचे 5 राजू, तो उन्होंने मारणांतिक उपपाद को लिया ही नहीं है। ये जो उन्होंने लिखा है ना, उसका अर्थ वो घटित नहीं होता है। हाँ, वही तो सात राजू ऊपर हो जाता है, सात राजू ऊपर हो जाए, नहीं कुछ कम कहो फिर भी सात राजू ऊपर और
करने वाले बारह विश्व
नीचे पांच राजू।
विहार की अपेक्षा कितने कौन से स्वर्ग से नीचे विहार करते हैं?
देखो विहार तो करेंगे सोलवे स्वर्ग तक के, परंतु सोलवे स्वर्ग वाले विहार करके मध्यलोक में आएंगे,
नीचे
नहीं जाएंगे। तो उनके छह राजू होगा, उनका विहार छह राजू तक होगा। और यहाँ तो मारणांतिक की अपेक्षा लेना है या उपोपाद लेना है, वो सम्यक दृष्टि है, इतनी ही बात है। आप भी निबोधिक ज्ञानी किसी भी गुणस्थान में हो सकते हैं चौथे के ऊपर, जिनमें मरण होता है जिनमें उपोपाद होता है, तो वो नरक आनत प्राणत वाले नहीं जाते। आनत से लेकर ऊपर जो है ना शुक्लेशा वाले मध्यलोक में आते हैं, नरकों में नहीं जाते। वो सीता का वो जो कुछ हम कहते हैं उसमें कर्णन योग में वो नहीं बैठता है। आनत प्राणत आरण अच्युत वाले नहीं जाते, ग्रवेक वाले तो ऐसे भी जाते नहीं है। बारहवें स्वर्ग तक के नीचे जाएंगे नरक में विहार करके। सीता वो प्राणत में है ना, सोलवे में है। हाँ, और फिर रावण को रावण कितवे में, और चौथे में कौन है? लक्ष्मण एक कोई चौथे में। लक्ष्मण को उपदेश नहीं देते, रावण को देते कैसी विचित्रता, कैसी विचित्रता। कृष्ण तीसरे में है क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है। कृष्ण रावण को भी टाइम है। क्या था शाही
तीर्थंकर शाही कल आया था ना?
नहीं नहीं नहीं,
हाँ कल आया था।
देखो बात ऐसी है, ये भरत भूमि की अपेक्षा से कह रहे हैं कौन?
हाँ यहीं पर आने वाले हैं। और उनके ऐसा है जो पहले क्षायिक नहीं है, अभी दूसरे और तीसरे नरक से आने वाले वेदक समय दृष्टि है, और उनको क्षायिक क्षय करने के लिए दूसरे किसी केवली के तीर्थंकर का वगैरह वो पादमूल की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही क्षायिक हो जाते हैं। नहीं आने पर मनुष्य ही होते हैं, नरक में होते ही नहीं। हाँ कहाँ से कहाँ गए हम ये। हाँ ये उन्होंने जो उसमें घटित किया ना, वो घटित नहीं होता है तो बारह राजू हो जाएगा उपोपाद की अपेक्षा बात करेंगे तो, क्योंकि हाँ बोलो। विभंग ज्ञान मुझे उसका अर्थ होता है कु अवधि ज्ञान। विभंग ज्ञान है ना, पूछ लेना बिल्कुल ऐसे कोई मन में नहीं लाना, क्योंकि हमारे रोज के शब्द है ना तो हम भूल जाते हैं, कोई नया आदमी आता है।
बौद्धिक की बात है ना?
नहीं वो विभंग ज्ञान की पूछ रहे हैं, अर्थ पूछ रहे हैं। विभंग ज्ञानी यानी कु अवधि ज्ञानी, देव और नार की जो मिथ्या दृष्टि वो सारे विभंग ज्ञानी है, यानी उनके नियम से होता ही है वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते उसको। और बाकी जो सम्यक दृष्टि है वो तो अवधि ज्ञानी है। मनुष्यों में और तिर्यंचों में वो किसी किसी को होता है विभंग ज्ञान।
विभंग ज्ञान में उपपाद नहीं होता है, खाली मारणांतिक होता है।
हाँ विभंग ज्ञान में वो अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं पाया जाता, पर्याप्त होने पर। तो मेरा प्रश्न है अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान जो है सु अवधि है ना, तो अपर्याप्त अवस्था में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा?
पाया जाएगा।
सर्वथा सबको होगा?
नहीं,
नहीं हम देवों की बात करें, देवों को सभी को अवधि ज्ञान है, वो वहां पाया जाएगा ही क्या नहीं जाएगा? हाँ जो मनुष्य अवधि ज्ञानी है सम्यक दृष्टि, मनुष्य में से सम्यक दृष्टि जा रहा है, मनुष्य में से सम्यक दृष्टि जा रहा है, मनुष्य जिसके अवधि ज्ञान नहीं है ऐसा सम्यक दृष्टि जीव देवों में जन्मता है, तो क्या अपर्याप्त में उसको अवधि ज्ञान होगा? नहीं होगा। हाँ जो अवधि ज्ञान इसके है और जो भवानुगमी है ना, वो तो हम कह रहे ना अननुगमी। हाँ वही तो, यानी पहले भव में जिसके अवधि ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, और वो सम्यक तो अवधि ज्ञान सहित वो चला जाता है दूसरे भव में, उनके अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान यानी सो अवधि ज्ञान होगा देवों में, परंतु यहाँ जो अवधि ज्ञान जिसको नहीं है, नहीं नहीं भव प्रत्यय वहां तो सबको होगा, परंतु वो भी हाँ मिश्र अवस्था में नहीं होगा। अभी यहाँ से सम्यक दर्शन के सहित गया है कोई, उसके अवधि ज्ञान नहीं है, भले वो मुनि है या श्रावक है, अब देवों में गया है तो अपर्याप्त अवस्था है ना, जिसको कहते हैं निवृत्ति अपर्याप्त, दूसरे शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तब तक उसको निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं, तो उनके अवधि ज्ञान तभी नहीं है, पर्याप्ति पूरी होने के बाद उनके अवधि ज्ञान होता है। हाँ होगा, अनुगामी यानी उसके भव अन्य भव में भी साथ चलता है उसको अनुगामी के, जैसे देवों में से भी आने वालों के कितने को होगा ना, हाँ भवानुगामी भव अननुगामी और क्षेत्र अननुगामी, हाँ अनुगामी और अननुगामी ऐसे दो है। अनुगामी यानी चलता है फॉलोज, और अननुगामी यानी नहीं फॉलो करता है। और उभयानुगामी ऐसा देखो, अभी हम नीचे से तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं विशेषार्थ की, यहाँ मूल में अवधि दर्शन वाले आदि जो अन्य मार्गणाएं कही हैं उनमें दोनों विभक्ति वालों का स्पर्शन आभिनिबोधिक ज्ञानी, अभी हमने देखा ना यानी सम्यक ज्ञानी जीव जीवों के समान प्राप्त होने से यह उनके समान कहा है। अब उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले संयतों में उत्कृष्ट किसके होगा, उनके योग्य उत्कृष्ट। हाँ बोलो,
संयता संयत में उत्कृष्ट अनुभाग,
हाँ उत्कृष्ट अनुभाग, हाँ विषय योजना वाले तो जगन ने आपको याद है, हाँ
जो 28 की सत्ता वाला जो,
हाँ 28 की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव, और वो वेदक सम्यक तो प्राप्त करेगा अधिक से अधिक अनुभाग के साथ, वेदक सम्यक तो उसके होगा।
ये क्या संक्रमण होता है जब भी उसकी तो सत्ता में तो तीनों प्रकृति पड़ी है,
हाँ
तभी उदय एक का बंद होकर दूसरे का चालू होता है,
हाँ
तो उसका क्या अनुभाग घटना बढ़ना होता है?
देखो उदय रूप अनुभाग में बहुत घटना बढ़ता होता है, परंतु यहाँ हम विभक्ति में सत्ता का अनुभाग देख रहे हैं, नहीं समझे,
वहाँ पे तो सम्यक प्रकृति तो पहले से बनी पड़ी थी,
हाँ सम्यक प्रकृति, हम यहाँ मोहनी मूल प्रकृति की बात देख रहे हैं।
अच्छा,
यहाँ किसी उत्तर प्रकृति की बात अभी उठाई नहीं है, वो जब आएगा नेक्स्ट, थोड़ा विचार करने को ज्यादा हमको इसमें आने वाले आगे हैं, अभी तो मूल प्रकृति की बात चल रही है। देखो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले संयता संयतों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यात भाग का, वर्तमान लोक का असंख्यात भाग, क्योंकि संयता संयत कौन है, देवनार की तो हो नहीं सकते, मनुष्य और तिर्यंच और उत्कृष्ट अनुभाग वाले हैं, है ना, और 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। हाँ ये मारणांतिक 6 भाग क्यों लिए, देखो तिर्यंच भी 5वें गुणस्थान वाले 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, तो उनकी मेजॉरिटी है ना, संयता संयतों में असंख्यात तो तिर्यंच है, और वे सारे सम्मूर्छन वाले वेदक करने वाले होते हैं, उन्हीं में ये मेजॉरिटी होगी उत्कृष्ट अनुभाग वाले, तो वो मारणांतिक करते हैं कहां तक, 16वें स्वर्ग तक। अश्विनी ख्याल में आई बात ये, देखो तिर्यंच कहाँ रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं, अब यहाँ 5वें गुणस्थान वाले तिर्यंच कौन है, तो भोग भूमि वाले नहीं होते, भोग भूमि में 4था ही गुणस्थान होता है, हाँ। तो या तो ये 2.5 द्वीप वाले तिर्यंच, या लास्ट वाला स्वयंभू रमण समुद्र और उसके पहले वाले द्वीप के आउटर हाफ, यही वहाँ पाए जाते हैं। तो वहाँ पांचवें गुणस्थान वाले जीव पाए जाएंगे तिर्यंच, और वो मरकर कहाँ तक ऊपर तक जा सकते हैं स्वर्गों में, तो 16वें स्वर्ग तक। वो 16वां स्वर्ग कितना ऊपर है, तो 6 राजू ऊपर है। तो ये जो तिर्यंच मानाति करेंगे तो कहाँ तक करेंगे, 16वें स्वर्ग तक। तो इसलिए 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण कहा, उनकी मेजॉरिटी है ना। अब देव मारणांति करेंगे, परंतु देवों का गुणस्थान चौथा है, इसलिए यहाँ संयता संयोतों में वो घटित नहीं होगा, इसलिए हमें नीचे से ऊपर करने वाले ही जीव लेना है। मनुष्य मारणांति करेंगे तो संयता संयत वाले वो भी वहां तक जा सकते हैं, परंतु मनुष्य जाएंगे तो अढ़ीद्वीप में ढाई द्वीप में से ही जाएंगे, तो पूरा 6/14 नहीं घटित होगा, तो तिर्यंचों की अपेक्षा घटित होता है। ये 16वें स्वर्ग तक। हाँ, इसी प्रकार शुक्ल लेशा वालों में जानना चाहिए।
मनुष्य संयता सहित तो वो तो ऊपर तक जा सकते हैं ना, सर्वार्थ सिद्धि भी नहीं जाएंगे कि द्रव्यक तक ही जाएंगे।
द्रव्यक तक जा सकते हैं, द्रव्यलिंगी
भावलिंगी,
भावलिंगी संयता संयत
कहाँ, सभी भावलिंगी नहीं है, संयता संयत है,
संयता संयत है और द्रव्यलिंगी है। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी भी जा सकते हैं।
हाँ, और संयता
तो द्रव्यलिंगी है, और वो मान लेते पहले भावलिंगी भी हो गए, संयता संयत में आ गए।
हाँ,
या कोई द्रव्यलिंगी मुनि है
वो नवी ग्रेव तक।
हाँ, नवी ग्रेव में जाने वाले। हाँ, वही तो बताया मैंने, मनुष्य लोक छोटा है तो पूरे 6/14 घटित नहीं होता है, वो तिर्यंचों की अपेक्षा घटित होता है। मनुष्य जाएंगे तो उतने क्षेत्र में से ऊपर जा सकते हैं ना, पहले ऊपर जाएंगे फिर आड़े वो जहां जाना है वहां जाएंगे। इसी प्रकार शुक्ल लेशा वालों में जानना चाहिए। संख्या कम है, तेजो लेशा और पद्म लेशा वाले जीवों के सौधर्म और सनत कुमार कल्प के समान भंग होता है, क्योंकि सौधर्म है तो 1.5 राजू ऊपर तक है, और सनत कुमार और ऊपर ले लेना 3 राजू तक, परंतु वो विहार करके तो जाएंगे सर्वत्र। मुनि की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले सासाधन सम्यक दृष्टियों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक के असंख्यातवे भाग का, और 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग ये देव विहार करने वाले लिए, और कुछ कम 12 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये तो इसका लिए है ना, सासाधन समय दृष्टि में मारणांतिक की अपेक्षा। मारणांतिक कैसे घटित करेंगे,
नरक में से ऊपर आने वाले।
हाँ, नरक में से ऊपर आने वाले, नरक में जाने वाले
नहीं।
सासाधन वाले मरकर नरक में नहीं जाते। हाँ, सासाधन में से मरकर, सासाधन गुणस्थान में मरकर मनुष्य में जा सकते, तिर्यंच में जा सकते, देव में जा सकते, कोई भी जीव नरक में नहीं जाता। परंतु नारकी सासाधन में मरकर छठे नरक तक के, नारकी छठे नरक तक के, सातवें नरक वाला तो मिथ्या तो ही मरता है, मिथ्या तो में ही मारणांतिक करता है, इसलिए छठा नरक है वो नीचे 5 राजू है, और वहां से मध्य लोक में करेगा तो 5 राजू नीचे हो गए, और ऊपर 7। क्यों, ये 8वीं पृथ्वी में मारणांतिक करने वाले, 7 राजू ऊपर, तो देव मारणांतिक करके ऊपर जाने वाले 7 राजू तक जा सकते हैं, और नीचे ये नारकीय ऊपर आ सकते, 5 राजू नीचे से आ सकते, इसलिए 12। इसका विशेषार्थ इतना पढ़ लेते हैं। संयता संयतों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, और अति स्पर्शन कुछ कम 6/14 राजू प्रमाण है। इनके इन दोनों प्रकार के स्पर्शन के समय दोनों विभक्तियां संभव है, उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी, इसलिए इनमें दोनों विभक्ति वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा। शुक्ल लेशा वालों में इसी प्रकार घटित करना घटित कर लेना चाहिए। प्रीत लेशा सौधर्म और ऐशान कल्प वालों के तथा पद्म लेशा सनत कुमार आदि कल्प वालों के होती है। इसलिए इन दोनों लेशा वालों में दोनों विभक्ति वालों का स्पर्शन क्रम से सौधर्म और सनत कुमार के देवों के समान कहा है। सासाधन सम्यक दृष्टियों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण विहारवत स्वस्थान आदि की अपेक्षा कुछ कम 8/8 करना 14 राजू प्रमाण और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 12/14 राजू प्रमाण कहा। इनके इन सब स्पर्शनों के समय दोनों विभक्तियां संभव है, इसलिए इनमें दोनों विभक्ति वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा। इस प्रकार उत्कृष्ट स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ। कल जघन्य देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नहु सदा देत हो। दोषी सर।